ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं रमिता यादव। आरंभ में मुख्य समाचार। दशहरा अंतर्गत आज माता सिद्धि दात्री की पूजा आराधना कर मनाई गई महानवमी। इस साल विजयादशमी के टीके का शुभ मुहूर्त कल सुबह 10:02 पर। देश में आज कोरोना के 455 नए मामले आए सामने। संक्रमित 8 मरीजों की हुई मौत। मोगू में 32 लोगों की जान जाने वाली दुर्घटना की जांच के लिए करनाली प्रदेश प्रहरी ने किया जांच समिति का गठन। और ताइवान के काओशुंग शहर स्थित एक आवासीय भवन में आग लगने से कम 46 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। दशहरा अंतर्गत आज माता सिद्धि दात्री की पूजा आराधना करने के साथ ही महानवमी पर्व मनाया गया। महानवमी के दिन विभिन्न शक्ति पीठों में माता सिद्धि दात्री की पूजा आराधना के साथ कुमारी पूजन एवं कुमारी भोजन भी कराया जाता है। आज ही के दिन काठमांडू स्थित हनुमान ढोका दरबार के साथ ही नेपाली सेना के बैरकों और गुल्मों में बाजे गाजे के साथ जंगी निशान पूजा और कोत पूजा करने का प्रचलन भी है। सिर्फ महानवमी के दिन ही खुलने वाले हनुमान ढोका इसी तलेजू भवानी मंदिर में दर्शन पूजा के लिए आज सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारी देखी गई। बता दें कि कोरोना की बढ़ती लहर को देखते हुए पिछले साल के दशहरे में तलेजू मंदिर को नहीं खोला गया था, लेकिन इस बार व्यापक रूप में हुए टीकाकरण के मद्देनजर मंदिर को दर्शनार्थियों के लिए खोला गया। ये जानकारी हनुमान ढोका देखभाल अड्डा कार्यालय के प्रमुख संदीप खनाल ने दी। दूसरी तरफ महानवमी के दिन ही आम नागरिकों के लिए खुलने वाले भक्तपुर के तलेजू भवानी मंदिर को भी इस बार आम श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। इस बार विजयादशमी के टीके का शुभ मुहूर्त कल सुबह 10:02 पर है। ये बात नेपाल पंचांग निर्णायक समिति ने बताई। हालांकि समिति ने यह भी कहा है कि निर्धारित मुहूर्त में किसी कारणवश अगर टीका नहीं लगाया जा सका तो दिन भर में कभी भी लगाया जा सकता है। वहीं देवी विसर्जन का मुहूर्त कल सुबह 8:19 पर बताया गया है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने साफ फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचकर राष्ट्रीय गौरव हासिल करने में सफल होने पर नेपाली फुटबॉल टोली को बधाई दी है। आज एक ट्वीट के जरिए राष्ट्रपति भंडारी ने नेपाली फुटबॉल टीम के सभी खिलाड़ियों और प्रशिक्षक समेत पदाधिकारियों को भी बधाई दी है। बता दें कि कल बुधवार के खेल में नेपाली फुटबॉल टीम बांग्लादेश को बराबरी पर रोकते हुए फाइनल में पहुंची है। अब फाइनल खेल में नेपाल और भारत के बीच प्रतिस्पर्धा होगी। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने भी साफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची नेपाली फुटबॉल टीम के प्रति बधाई ज्ञापन किया है। कल के खेल में बांग्लादेश को 1-1 की बराबरी पर रोककर नेपाल पहली बार साफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। सप्तरी की हनुमान नगर कंकालनी नगर पालिका की एक किशोरी की कोशी में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। कंकालनी नगर पालिका वार्ड नंबर 12 के धीरेन्द्र देव की 18 वर्षीय बेटी की कोशी नदी में नहाने के क्रम में डूबने से हुई मौत की जानकारी हमारे संवाददाता दीनानाथ यादव ने दी। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा ने कहा कि किसी के दबाव में आकर देश और जनता के हित विपरीत कोई काम नहीं करेंगे। सिंधुपाल चौकी बलेफी गांव पालिका वार्ड नंबर 4 फुलपिंग डाड़ा में फैफुल्ला क्लब भवन का उद्घाटन एवं विजयादशमी की शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में सभामुख सापकोटा ने कहा कि 2 सालों की अवधि में देश को कोविड-19 प्राकृतिक आपदा और राजनीतिक उतार चढ़ाव जैसे संकटों का सामना करना पड़ा है। इन सभी संकटों से क्रमशः देश ऊपर उठेगा। तापलेजुंग की फुंगलिंग नगरपालिका के ल्यांगबा में बोलेरो जीप दुर्घटनाग्रस्त होने से 10 लोग बुरी तरह से घायल हुए जबकि 8 लोग सामान्य रूप से घायल हुए हैं। बुरी तरह से घायल हुए 10 में से भी 8 लोगों की हालत गंभीर बताई गई है। गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए जिले से बाहर रेफर किया गया है। ये जानकारी तापलेजुंग के इंस्पेक्टर राकेश यादव ने दी। करनाली प्रदेश पुलिस कार्यालय सुर्खेत ने मंगलवार को मोगू में हुई बस दुर्घटना के विषय में जांच करने के लिए समिति का गठन किया है। हादसे के विषय में 10 दिनों के भीतर प्रतिवेदन पेश करने के लिए प्रदेश ट्रैफिक पुलिस कार्यालय के डीएसपी वीरेंद्र विश्वकर्मा के संयोजकत्व में 3 सदस्यों की समिति का गठन किया गया है। ये जानकारी कार्यालय ने दी। समिति में प्रदेश पुलिस कार्यालय के इंस्पेक्टर जीवन लामिछाने, प्रदेश ट्रैफिक कार्यालय के हवलदार हरि लामिछाने शामिल है। बता दें कि नेपालगंज से मोगू जिला मुख्यालय गमगढ़ी जा रही बस मंगलवार पिनातपने खोला में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और हादसे में 32 लोगों की जानी गई थी जबकि अन्य 13 लोग घायल हुए थे। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबू, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजी।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजी।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजी।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे, त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14# ह्यास डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। आज देशभर कोरोना के 455 नए मामले सामने आए हैं, ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 8 संक्रमितों की मौत हो गई है जबकि आज 804 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। मंत्रालय के अनुसार बहरहाल देशभर सक्रिय संक्रमितों की संख्या 13,853 है। कैलाली पुलिस ने भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ड्रोन और तालीम प्राप्त कुत्ते का परिचालन कर सुरक्षा निगरानी को सख्त बनाया है। त्योहारों के मद्देनजर विशेष सुरक्षा योजना अंतर्गत नेपाल भारत सीमा नाकों पर कड़ाई करने के साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन के साथ ही तालीम प्राप्त कुत्ते का इस्तेमाल कर सुरक्षा निगरानी को कड़ा बनाया गया है। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय कैलाली ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ताइवान के काओशुंग शहर में आज एक 13 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। इसकी चपेट में आने से 46 लोगों की मौत हो गई है और 79 लोग झुलस गए। दमकल विभाग ने बताया कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया है जिनमें से 14 की हालत गंभीर है। अधिकारियों ने बताया कि आग तड़के करीब 3 बजे लगी। आग लगने की वजह अभी पता नहीं चल पाई है। अधिकारियों ने पहले चेतावनी दी थी कि 7वीं और 11वीं मंजिल के बीच इमारत के रिहायशी हिस्से में लोग फंसे हो सकते हैं। हालांकि अब इमारत को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दशहरा अंतर्गत आज माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना कर मनाई गई महानवमी। इस साल विजया दशमी के टीके का शुभ मुहूर्त कल सुबह 10:02 पर। देश में आज कोरोना के 455 नए मामले आए सामने, संक्रमित 8 मरीजों की हुई मौत। मोगू में 32 लोगों की जान जाने वाली दुर्घटना की जांच के लिए करनाली प्रदेश प्रहरी ने किया जांच समिति का गठन। और ताइवान के काओसुंग शहर स्थित एक आवासीय भवन में आग लगने से कम 46 लोगों की हुई मौत। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से इजाजत दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार, शुभरात्रि।